एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जो दशकों तक, मतलब लगभग खोई हुई थी।
जी
लेकिन हाल ही में जब ये सामने आई तो इसने पूरी दुनिया को, आप कह सकते हैं, झकझोर कर रख दिया। किताब है कोल्ड क्रेमेटोरियम, रिपोर्टिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ ऑशविट्स।
जी हाँ, और इसके लेखक हैं जोसेफ डिब्रसेनी, एक हंगेरियन यहूदी पत्रकार और कवि। वो हॉलोकॉस्ट की उस भयावहता से गुजरे और जीवित बचे,
अच्छा,
और उन्होंने ये संस्मरण असल में 1950 में ही लिख दिया था हंगेरियन भाषा में।
50 में, तो फिर इतना वक्त क्यों लगा?
हाँ, लेकिन इसका सही मायने में वैश्विक प्रकाशन, खासकर जो अंग्रेजी अनुवाद है, वो तो अभी 2024 में ही हो पाया है, बहुत देर से।
और ये सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, है ना? मैंने सुना है इसे साहित्यिक गैर काल्पनिक रचना, लिटरेरी नॉन फिक्शन कहा जा रहा है।
बिल्कुल,
लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो शायद इसका अंदाज है। कहते हैं इसमें वीरता या कोई आध्यात्मिक मुक्ति की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे नरक से आई एक ठंडी विश्लेषण करती हुई रिपोर्ट है,
क्लिनिकल कह सकते हैं।
क्लिनिकल। मतलब डेब्रेसेनी की शैली बहुत अलग है। वो भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि एक डॉक्टर की तरह बड़ी निर्ममता से उस पूरी विनाशकारी मशीनरी का विश्लेषण करते हैं। ये किताब दिखाती है कि जब इंसान से उसकी इंसानियत, मतलब पूरी तरह से छीन ली जाती है, तो पीछे बचता क्या है।
और किताब का शीर्षक भी वो बड़ा सोचने पर मजबूर करता है, कोल्ड क्रीमेटोरियम, ठंडा दाह संस्कार गृह।
जी
ये सीधे गैस चेंबर की बात नहीं कर रहा जिसे शायद हॉट क्रीमेटोरियम कह सकते थे। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है वो अनगिनत लोग, वो हजारों लोग जो आउशविट्ज़ के सब कैंप्स में, मतलब उप शिविरों में भेजे गए थे,
अच्छा, मुख्य शिविर से अलग।
वही है कोल्ड क्रेमेटोरियम, एक ठंडा नरक।
ये जानना ही सेहरन पैदा करता है। और मैंने पढ़ा है कि कई समीक्षक इसे प्रीमो लेवी और एली विजल जैसे महान लेखकों की श्रेणी में रख रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ तो कह रहे हैं कि शायद उनसे भी ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा आधुनिक।
दशकों बाद इस किताब का मिलना, ये तो वाकई एक बड़ी साहित्यिक घटना है।
हाँ, और मुझे लगता है आज इस कहानी को सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि मानवता किस हद तक गिर सकती है, और उस सच को, उस कड़वे सच को दर्ज करने में कितनी ताकत होती है, ये समझने के लिए कि कैसे वो व्यवस्थित क्रूरता काम करती है और कैसे एक व्यक्ति उस अनुभव को शब्दों में ढाल सकता है, वो भी इतने सालों बाद।
तो चलिए फिर जोसेफ डिब्रसेनी की जीवन और उनकी इस असाधारण गवाही की परतों को खोलते हैं। कहां से शुरू होती है उनकी कहानी?
जोसेफ डिब्रसेनी, जिनका जन्म का नाम जोसेफ ब्रूनर था, वो 1905 में बुडापेस्ट में एक हंगेरियन यहूदी परिवार में जन्मे।
बुडापेस्ट में?
हाँ, लेकिन उनका बचपन और जवानी जो है वो वॉजवोडिना क्षेत्र में बीती। ये पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा था, फिर 1920 की ट्रियानॉन संधि के बाद युगोस्लाविया का हिस्सा बन गया।
अच्छा, यानी एक मिला जुला इलाका होगा।
बिल्कुल, बहु सांस्कृतिक, बहुभाषाई, तो वो उस दौर के, आप कह सकते हैं, उदारवादी यहूदी माहौल में पले बढ़े जहां समाज में घुलना मिलना, एसिमिलेशन आम बात थी।
तो वो खुद को एक हंगेरियन लेखक और बुद्धिजीवी के तौर पर देखते थे, मतलब उनकी पहचान यहूदी होने से ज्यादा हंगेरियन थी।
हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान संस्कृति और भाषा से ज्यादा जुड़ी थी। उन्होंने नोवी सैड शहर में हंगेरियन भाषा के अखबारों के लिए पत्रकार और संपादक के तौर पर काम शुरू किया।
वहीं से शुरुआत हुई।
जी, और यही उनकी लेखनी पहनी हुई भाषा संक्षिप्त बनी, और ये जो जटिल सामाजिक ताने बाने होते हैं उनको समझने और उनका विश्लेषण करने का हुनर उनमें विकसित हुआ। ये कौशल बाद में, खैर बाद में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ।
तो मतलब एक उभरते हुए लेखक, कवि, संपादक, 1930 के दशक तक तो वो अपने क्षेत्र में एक जाना माना नाम बन गए होंगे।
हाँ, वो क्षेत्रीय साहित्यिक परिदृश्य में एक सम्मानित व्यक्ति थे, और उनका नजरिया, जैसा मैंने कहा, धर्म निरपेक्ष और मानवतावादी था। उन्हें तर्क में, प्रगति में, मानवीय मूल्यों में गहरा विश्वास था।
एक तरह से प्रबोधन काल के आदर्शों वाले व्यक्ति।
बिल्कुल, आप कह सकते हैं। लेकिन यूरोप का माहौल बदल रहा था बहुत तेजी से, फासीवाद और यहूदी विरोध की लहर वो तेज हो रही थी।
हाँ, वो दौर तो बहुत उथल पुथल वाला था, इसका उन पर क्या असर पड़ा?
असर तो बहुत गहरा और आखिर में विनाशकारी साबित हुआ। अप्रैल 1941 में हंगरी, जो नाजी जर्मनी का सहयोगी बन चुका था, उसने वोजवोडिना पर कब्जा कर लिया।
अच्छा।
और इसके फौरन बाद यहूदी विरोधी कानून लागू हो गए,
यानी उनके अधिकार छीन लिए रहेंगे, संपत्ति जब्त, व्यवसाय बंद।
जी हाँ, सब कुछ। अगले 3 साल उनके लिए लगातार बढ़ते उत्पीड़न, डर और अनिश्चितता के माहौल में बीते। सोचिए, एक बुद्धिजीवी जो विचारों और शब्दों की दुनिया में रहता था, अब वो एक ऐसी बर्बर ताकत का सामना कर रहा था जिसका तर्क से कोई लेना देना नहीं था।
और फिर आया 1944 का वो भयावह वसंत।
हाँ, वसंत 1944, जब जर्मनी ने हंगरी पर सीधा कब्जा कर लिया और फिर हंगेरियन यहूदियों को बड़े पैमाने पर ऑशविट्स भेजने का वो भयानक सिलसिला शुरू हुआ।
उसी दौरान
जी डेब्रिसिनी, उनकी पत्नी लेंके और उनके शहर नोवी सैड की पूरी यहूदी आबादी को मवेशी ढोने वाली मालगाड़ियों में जानवरों की तरह ठूंस दिया गया। यहीं से आप कह सकते हैं कोल्ड क्रेमेटोरियम की असल कहानी शुरू होती है।
उस ट्रेन यात्रा का अंत वो ऑशविट्स बिर्कनो में हुआ होगा, जहां पहुंचते ही वो कुख्यात सिलेक्शन होता था।
हाँ, वही डॉक्टर मेंगले जैसे एसएस अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला सिलेक्शन, एक इशारा दाईं ओर, मतलब अस्थाई जीवन और हाड़ तोड़ मेहनत,
और बाईं ओर,
एक इशारा बाईं ओर, मतलब सीधी मौत, गैस चेम्बर में। डेब्रिसिनी को दाईं ओर भेजा गया,
और उनकी पत्नी,
उनकी पत्नी लेंके को बाईं ओर।
ओह, उसी एक पल में उनका पूरा अतीत, उनकी पहचान, उनका प्यार, सब कुछ, सब उनसे छीन लिया गया। अब वो सिर्फ एक नंबर थे।
बिल्कुल, लेखक जोसेफ डेब्रिसिनी का अस्तित्व जैसे मिट गया। अब वो सिर्फ एक कैदी थे, एक नंबर, जिसे बस जीवित रहने के लिए संघर्ष करना था। ऑशविट्स ने उनका लहना वैसे संक्षिप्त ही था।
अच्छा।
लेकिन वहीं उन्होंने शिविर के वो क्रूर अलिखित नियम सीखे, कैदियों के बीच का जो पदानुक्रम होता है वो सीखा, जिंदा रहने के लिए भोजन चुराने की कला, जिसे वो लोग संगठित करना कहते थे,
ऑर्गेनाइज करना।
हाँ, और उन चिमनीम का भयानक सच, जिनसे लगातार धुआं उठता रहता था, वो सब उन्होंने वहीं देखा, समझा,
और फिर उन्हें उन उप शिविरों में भेज दिया गया जिन्हें उन्होंने कोल्ड क्रेमेटोरियम कहा।
हाँ, जैसे डॉनहाउ, लीबरोज और भी कई। ये वो जगह थीं जहां नाजी व्यवस्था ने मौत को एक औद्योगिक प्रक्रिया बना दिया था, पर गैस से नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, यहां मौत भुखमरी से आती थी।
और ठंड,
असहनीय ठंड, संक्रामक बीमारियां और दिन रात की अमानवीय मेहनत, बस एक धीमी ठंडी मौत की तरफ बढ़ते जाना।
उन्हें किस तरह का काम करना पड़ता था इन जगहों पर?
अलग अलग फैक्ट्रियों में, खदानों में, निर्माण स्थलों पर, वो भी बिना पर्याप्त भोजन या कपड़ों के। डेब्रिसिनी अपने आसपास के लोगों के शारीरिक और मानसिक पतन को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखते और दर्ज करते हैं। और उन्होंने उस स्थिति का बड़ा गहरा विश्लेषण किया है जिसे मुसलमान कहा जाता था।
मुसलमान, हाँ, ये शब्द मैंने पढ़ा है। इसका मतलब है वो कैदी जो शारीरिक और मानसिक रूप से इतना टूट चुका है कि उसमें जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, जैसे चलता फिरता शव।
नाक रूप से बढ़ते हुए महसूस किया था वो अपने शरीर के क्षय का, मतलब भूख, पेचिश, टाइफस, फ्रॉस्टबाइट, इनका वर्णन ऐसे करते हैं जैसे कोई वैज्ञानिक किसी निर्जीव वस्तु का अध्ययन कर रहा हो,
बिना किसी भावना के।
हाँ, लगभग। ये पढ़ना बहुत विचलित करने वाला है, पर यही उनकी असाधारण क्लिनिकल शैली है।
लेकिन इस नरक में भी उनकी वो पत्रकार वाली प्रवृत्ति, वो वृत्ति जीवित रही, ये कमाल है।
शायद, हाँ, शायद यही प्रवृत्ति उनके जीवित रहने का एक बड़ा कारण बनी। उनका शरीर भले ही जवाब दे रहा था, लेकिन उनका दिमाग सक्रिय था। वो लगातार शिविर की नौकरशाही संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे।
अच्छा।
एसएस गाणुओं की क्रूरता के पैटर्न और कैदी कार्यकर्ताओं, जिन्हें कापो कहा जाता था।
हाँ, कापो, जो खुद कैदी होकर दूसरों पर हुक्म चलाते थे।
जी, उनके नैतिक समझौतों का वो विश्लेषण करते रहे। ये जो बौद्धिक दूरी थी, ये उन्हें उस असहनीय यथार्थ को सहने में शायद थोड़ी मदद करती थी।
और फिर अंत कैसे हुआ है सबका, मुक्ति कैसे मिली उन्हें?
1944-45 के सर्दियों में जैसे जैसे सोवियत सेना आगे बढ़ रही थी, नाजी शिविरों में अफरा तफरी मच गई। बहुत से कैदियों को डेथ मार्च पर जाने को मजबूर किया गया।
डेथ मार्च मतलब?
मतलब बर्फीले मौसम में मीलों पैदल चलना बिना खाने पीने के, और जो रास्ते में गिर जाता उसे गोली मार दी जाती।
हे भगवान।
डेब्रिसिनी भी ऐसे ही एक मार्च पर थे और किसी चमत्कार से बच गए,
और अंततः सोवियत सैनिकों ने उन्हें मुक्त कराया। वो पल कैसा रहा होगा? क्या वो खुशी का पल था?
उनकी किताब के अनुसार नहीं, वो खुशी का पल बिल्कुल नहीं था। वो गहरे भ्रम, शारीरिक पतन और एक अजीब सी शून्यता का क्षण था। वो बस हड्डियों का ढांचा रह गए थे, टाइफस से बुरी तरह पीड़ित। किताब लगभग यहीं समाप्त होती है, जीवितों की दुनिया में एक अनिश्चित लड़खड़ाती वापसी के साथ।
युद्ध के बाद वो वापस यूगोस्लाविया लौटे और फिर से लेखन और संपादन का काम शुरू किया।
हाँ, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने कोल्ड क्रेमेटोरियम 1950 में लिखी, यानी मुक्ति के लगभग 5 साल बाद।
तो लिखने की प्रेरणा क्या रही होगी?
शायद गवाही देने की एक तीव्र आंतरिक आवश्यकता, जो देखा जो सहा उसे दर्ज करने की जरूरत। लेकिन उस समय के यूगोस्लाविया के राजनीतिक माहौल में, जहां टीटो का कम्युनिस्ट शासन था, इस तरह के व्यक्तिगत कड़वे और जटिल सच पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।
अच्छा।
किताब छपी तो, पर लगभग गुमनाम रही। कोई अनुवाद नहीं हुआ, कहीं चर्चा नहीं हुई।
और डब्रिटसिनी का 1978 में बेलग्रेड में निधन हो गया, ये जाने बिना कि उनकी ये कृति एक दिन विश्व साहित्य में अपना इतना महत्वपूर्ण स्थान बनाएगी।
हाँ, ये सचमुच दुखद है, लेकिन देर से ही सही, दुनिया अब उनकी आवाज सुन रही है और ये बहुत जरूरी है।
उनके जीवन के इस दर्दनाक यात्रा को जानने के बाद ये समझना वाकई जरूरी है कि इन अनुभवों ने उनके मूल विचारों और जीवन दर्शन को कैसे बदला होगा।
शिविरों में जाने से पहले तो वो एक मानवतावादी थे, जैसा आपने बताया, तर्क और प्रगति में विश्वास रखने वाले। हाँ, वो थे, लेकिन होलोकॉस्ट ने उस विश्व दृष्टि को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कोल्ड क्रेमेटोरियम से जो दर्शन उभरता है, उसे एक प्रकार का गंभीर जैविक भौतिकवाद कह सकते हैं, ग्रिम बायोलॉजिकल मटीरियलिज्म।
गंभीर जैविक भौतिकवाद, ये क्या है?
ऐसा लगता है जैसे वो शिविरों को समाज की कोई विकृति नहीं मानते थे, बल्कि एक ऐसी प्रयोगशाला मानते थे जिसने मानव अस्तित्व की नग्न सच्चाई को उजागर कर दिया।
नग्न सच्चाई? किस तरह की सच्चाई?
उनका मानना था कि जब स्थितियां चरम पर पहुंचती हैं, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पर, तो इंसान कोई आत्मा या बुद्धि से चलने वाला प्राणी नहीं रह जाता, वो मूलतः एक जैविक जीव बन जाता है।
सिर्फ एक शरीर?
हाँ, जिसकी सबसे बड़ी जरूरतें होती हैं कैलोरी, गर्मी और किसी भी कीमत पर बस जीवित रहना, सिर्फ सर्वाइवल। उन्होंने इसे पेट का कानून कहा, लॉ ऑफ द स्टमक।
पेट का कानून, यानी भूख और शारीरिक जरूरतें ही सब कुछ तय करती हैं, फिर नैतिकता, करुणा, दोस्ती, इन सब का क्या होता है?
डिब्रेटसिनी के विश्लेषण के अनुसार, ये सब विचार शिविर में खतरनाक विलासिता बन जाते हैं, मतलब इन पर टिके रहना एक तरह से मौत को बुलावा देना हो सकता है। यहाँ तक कि भाषा भी सिकुड़ जाती है, उसमें केवल अस्तित्व से जुड़े शब्द बचते हैं, सूप, ब्रेड, सिलेक्शन, कापो, ब्लॉक, मानवीय भावनाओं या ऊंचे विचारों के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं बचती।
उनके विश्लेषण में शिविर कैसा था? क्या वो सिर्फ क्रूरता और अराजकता का अड्डा था या कुछ और?
नहीं, और यही बात इसे और भी डरावना बनाती है। उनके अनुसार शिविर अराजक नहीं था, वो एक भयानक रूप से तर्कसंगत, सुनियोजित नौकरशाही प्रणाली थी।
तर्कसंगत? कैसे?
एक औद्योगिक इकाई की तरह, एक कारखाना जिसका कच्चा माल इंसान थे और जिसका अंतिम उत्पाद मौत थी। वो इसे आधुनिकता से भटकाव नहीं मानते थे, बल्कि उसी तर्क और दक्षता का सबसे अंधकारमय विकृत रूप मानते थे।
रोंगटे खड़े करने वाली बात है। तो ऐसी जगह पर जीवित रहने की प्रेरणा क्या हो सकती है? सिर्फ वो जैविक जरूरतें, पेट का कानून?
एक स्तर पर तो हाँ, सबसे बुनियादी प्रेरणा वही थी। बस अगला मिनट देखना, अगला घंटा काटना, रोटी का अगला टुकड़ा मिलना, इसके लिए उन्होंने अपनी पुरानी सारी पहचानें, पति, लेखक, बुद्धिजीवी जैसे एक तरफ रख दी,
सब भुला दिया।
लगभग हर क्रिया का आकलन सिर्फ इस आधार पर होता था कि क्या इससे ऊर्जा बचेगी, क्या इससे जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी, एक ठंडा निर्मम गणित।
लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि उनकी वो पत्रकार वाली वृत्ति, वो भी एक तरह का बचाव बनी।
हाँ, वो उनकी प्रेरणा का दूसरा समानांतर स्तर था, अवलोकन करना, समझना और रिकॉर्ड करना। ये उनकी पत्रकारिता की आदत थी जो एक तरह का मानसिक बचाव बन गई।
अच्छा।
वो शारीरिक रूप से भले ही पीड़ित थे, लेकिन मानसिक रूप से वो उस नर्क का विश्लेषण कर रहे थे, उसे दर्ज कर रहे थे। ये उन्हें एक बौद्धिक दूरी बनाए रखने में मदद करता था। वो शिकार भी थे और उस शिकार के विश्लेषक भी।
ये भविष्य में न्याय की उम्मीद से नहीं कर रहे थे वो, कि दुनिया जानेगी?
शायद उतनी उम्मीद नहीं थी, ज्यादा ये एक पेशेवर और व्यक्तिगत आग्रह था जो हो रहा है उसे यथासंभव सटीकता से दर्ज किया जाए, एक सुसंगत रिकॉर्ड बनाया जाए, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। गवाही देने की जरूरत।
इस विपत्ति का सामना करने का उनका तरीका क्या था? शारीरिक बल तो शायद नहीं रहा होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मुख्य हथियार उनकी बुद्धि थी और भावनात्मक नियंत्रण। उन्होंने जानबूझकर भावनाओं का दमन किया।
दमन?
हाँ, क्रोध, दुख, भय, इन सब को उन्होंने जैसे एक तरफ धकेल दिया। उन्होंने लिखा भी है कि शिविर में नसें एक निजी विलासत थीं, जानलेवा थीं।
जानलेवा क्यों?
क्योंकि भावनाएं ऊर्जा खर्च करती हैं, ध्यान भटकाती हैं और आपको कमजोर बनाती हैं, मुसलमान बनने के करीब ले जाती हैं।
तो उन्होंने भावनाओं की जगह विश्लेषण को चुना।
बिल्कुल, वो शिविर की संस्था संरचनाओं का विश्लेषण करते थे, कैदियों और गार्डों के व्यवहार का वर्गीकरण करते थे, शिविर की अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसे समझने की कोशिश करते थे, जैसे कोई समाजशास्त्री अपना फील्ड वर्क कर रहा हो।
ये अलगाव, ये बौद्धिकता, ये लचीलेपन का एक बहुत ही अनोखा और शायद, जैसा आपने कहा, क्रूर रूप लगता है।
हाँ है तो, जब वो किसी साथी कैदी की पिटाई या मौत का वर्णन करते हैं तो उसमें भावनात्मक चीत्कार कम होती है और शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया का ठंडा अवलोकन ज्यादा होता है। ऐसा लगता है जैसे महसूस करना एक ऐसी विलासिता थी जिसे वो उस समय वहन नहीं कर सकते थे। वो उस व्यवस्था को समझना चाहते थे जो उन्हें नष्ट करने पर तुली थी, शायद उसके नियमों को उसके बनाने वालों से भी बेहतर जानना चाहते थे, और इसी विश्लेषणात्मक नजरिए और निर्मम यथार्थवाद ने उन्हें उस विश्वासघाती परिदृश्य में टिके रहने में मदद की।
उनके इस भयावह सफर में जाहिर है कई ऐसे मोड़ आए होंगे जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया होगा। अगर हमें तीन सबसे निर्णायक घटनाओं को चुनना हो जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी, तो वो कौन सी होंगी?
हाँ, ये चुनना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि पूरा अनुभव ही इतना इतना गहरा था, लेकिन हाँ, तीन क्षण शायद विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। पहला निस्संदेह ऑशविट्स में आगमन पर हुआ वो सिलेक्शन,
वो क्षण जब एसएस अधिकारी ने एक इशारे से जीवन और मृत्यु का फैसला किया और उनकी पत्नी लेंके को उनसे हमेशा के लिए अलग कर दिया गया।
जी, वो सिर्फ पत्नी का बिछड़ना नहीं था, वो उनके पूरे अतीत, उनके प्रेम, उनकी पहचान से अंतिम सार्थक संबंध का टूटना था। वो उस दुनिया में उनका प्रवेश था जहां जीवन का कोई आंतरिक मूल्य नहीं था, जहां सब कुछ मनमानी क्रूरता पर निर्भर था।
मतलब पूरी तरह निरर्थकता का बोध।
हाँ, उस पर वो एक व्यक्ति से, एक लेखक से, महज एक नंबर, एक श्रम इकाई में बदल गए। ये शिविर का पहला और सबसे क्रूर सबक था उनके लिए।
और दूसरा मोड़ क्या था वो?
दूसरा मोड़ था जब उन्होंने शिविर के अंदर के उस ग्रे जोन को काम करते हुए देखा और समझा।
ग्रे जोन?
हाँ, मतलब जब उन्होंने देखा कि कैसे कुछ कैदी जिन्हें थोड़े विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कापो या ब्लॉक एल्डर, वो थोड़ी सी सुविधा या अतिरिक्त भोजन के लिए अपने ही साथी कैदियों पर बेरहमी से जुल्म करते थे, एसएस गार्डों के सहायक बन जाते थे।
इसने जरूर पीड़ित बनाम उत्पीड़क की जो सीधी सरल समझ होती है उसे चुनौती दी होगी।
बिल्कुल, उन्हें नाजी प्रणाली की वो शैतानी चतुराई समझ आई कि कैसे ये पीड़ितों को ही भ्रष्ट करती है, उन्हें अपने और दूसरों के उत्पीड़न में भागीदार बनने पर मजबूर करती है।
अच्छा,
इस समझ ने उनके विश्लेषण को और गहरा किया। वो सिर्फ बाहरी क्रूरता के शिकार नहीं थे, बल्कि वो उस आंतरिक नैतिक पतन के भी गवाह बन रहे थे जो शिविर का एक अभिन्न अंग था। वो एक ऐसे विश्लेषक बन गए जो देख रहा था कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई में नैतिकता कैसे और कितनी जल्दी कुचली जाती है।
और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वो क्या था?
तीसरा मोड़ तब आया जब वो डॉन हाउस शिविर के क्रंकनबाओ यानी बीमारों के बैरक में थे। भूखमरी और बीमारी से वो अपनी शारीरिक क्षमता के बिल्कुल निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके थे।
जिंदगी और मौत के बीच?
हाँ,
और वहां एक कैदी डॉक्टर ने, जो खुद भी कैदी था, बड़ी लापरवाही से उन्हें देखकर मुसलमान घोषित कर दिया।
मुसलमान
यानी जिसे डॉक्टरों ने भी मान लिया हो कि अब ये बचने वाला नहीं, ये तो बस मरने की कगार पर है, एक जिंदा लाश।
बिल्कुल, ये एक तरह की प्रतीकात्मक मृत्यु थी। उन्हें डॉक्टरों ने भी, जो खुद कैदी थे, त्याग दिया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से, शायद भाग्य या उनकी अपनी किसी छिपी हुई जिज्ञासा के बल पर, वो उस स्थिति से उभर गए।
वो बच गए।
हाँ, ये अनुभव जैसे मौत के मुंह तक जाकर वापस लौटने जैसा था। इसने उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच की उस धुंधली रेखा का शायद सबसे गहरा, सबसे व्यक्तिगत अनुभव दिया। वो जैसे मृतकों के ज्ञान के साथ जीवितों की दुनिया में वापस आए, और मुझे लगता है इसी अनुभव ने उनके लेखन को वो ठंडा अचूक अधिकार दिया जो हम उनकी किताब में पढ़ते हैं।
नागरिक से कैदी, कैदी से विश्लेषक और विश्लेषक से मौत को छूकर लौटा एक गवाह, ये तीन मोड़ वाकई उनके रूपांतरण को, उनकी यात्रा को दिखाते हैं। उनकी इस असाधारण और दर्दनाक कहानी से हम आज क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं? आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है?
देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे डरावना सबक तो यही है कि सभ्यता, नैतिकता, कानून, करुणा, ये सब बहुत पतली पड़ते हैं, बहुत नाजुक।
नाजुक।
हाँ, सही परिस्थितियां मिलने पर ये कितनी जल्दी ढह सकती हैं, और इनके नीचे की वो नग्न जैविक जरूरतें और क्रूरता सतह पर आ सकती है, ये डेब्रिसेनी का अनुभव दिखाता है।
दूसरा सबक शायद भाषा और नौकरशाही के खतरे से जुड़ा है।
बिल्कुल, हॉलोकॉस्ट गैस चेम्बर बनाने से शुरू नहीं हुआ था, वो शुरू हुआ था लोगों को अन्य कहने से, कीट या सिर्फ नंबर के रूप में वर्गीकृत करने और परिभाषित करने से। डेब्रिसेनी हमें दिखाते हैं कि कैसे एक ठंडी तर्कसंगत नौकरशाही सामूहिक हत्या जैसी चीज को भी एक रोजमर्रा के काम की तरह सामान्य और संभव बना सकती है। एक और जटिल सबक ये भी है कि जीवित रहना हमेशा नैतिक रूप से सही या वीरतापूर्ण नहीं होता। एक्सट्रीम स्थितियों में जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ता है वो शायद पारंपरिक नैतिकता के मानकों पर खरा न उतरे।
सही बात है।
ये मानवीय अनुकूलन क्षमता अच्छे और बुरे दोनों के लिए के बारे में एक असहज सवाल खड़ा करता है।
और अंततः गवाही देने की शक्ति और जिम्मेदारी, ये भी एक बड़ा सबक है।
हाँ, बहुत बड़ा। जब ताकतवर लोग इतिहास को मिटाने या सच को दबाने की कोशिश करते हैं, तब देखना, याद रखना और उसे दर्ज करना, यानी गवाही देना, अपने आप में प्रतिरोध का एक शक्तिशाली कार्य बन जाता है। डेब्रिसेनी की किताब इसी का प्रमाण है। ये दिखाता है कि सच को बयान करना, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, एक मौलिक मानवीय और नैतिक कर्तव्य है।
और आज के समय में जब हम दुनिया भर में बढ़ते राष्ट्रवाद, राजनीतिक ध्रुवीकरण और खासकर ऑनलाइन माध्यमों पर लोगों को अमानवीय बताने वाली भाषा का इस्तेमाल देखते हैं, तब डेब्रिसेनी की चेतावनी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि किसी समूह को अन्य मानकर उसे अमानवीय बनाना कितना आसान है और समाज कितनी आसानी से बर्बरता की ओर फिसल सकता है। उनका ये विश्लेषण कि कैसे इंसानों को वस्तुओं में बदल दिया गया, आज भी हमें सतर्क रहने की जरूरत बताता है।
खासकर तब जब होलोकॉस्ट को अपनी आंखों से देखने वाली पीढ़ी अब धीरे धीरे हमारे बीच से जा रही है। डेब्रिसेनी जैसे प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत अब पवित्र दस्तावेज बन गए हैं।
सही कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि फिर कभी नहीं सिर्फ एक खोखला नारा न बनकर रह जाए।
यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है,
हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन आवाजों को सुना जाए, समझा जाए और याद रखा जाए।
इस गहरी और गंभीर बातचीत के अंत में अगर हमें डेब्रिसेनी के जीवन और उनकी किताब से तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वे क्या होंगे?
भावनात्मक स्तर पर शायद सबसे मार्मिक और परेशान करने वाली अंतर्दृष्टि ये है कि डेब्रिसेनी के लिए जीवित रहने का एक तरीका भावनाओं का पूर्ण दमन था।
हाँ, ये बात बहुत असर करती है।
ये एक द्रुत शीतन विरोधाभास है कि अकल्पनीय भयावहता को सहने के लिए उन्हें महसूस करने की क्षमता को लगभग बंद करना पड़ा। ये हमें मानवीय मानस की जटिलता और चरम दबाव में उसके आत्मसंरक्षण के तरीकों पर सोचने को मजबूर करता है।
और बौद्धिक अंतर्दृष्टि,
बौद्धिक रूप से मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि यातना शिविर केवल क्रूरता या अराजकता का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि वो एक भयानक रूप से तर्कसंगत औद्योगिक प्रणाली थे।
वो मृत्यु का कारखाना वाला विचार।
हाँ, डेब्रिसेनी का ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे आधुनिकता, तर्क, दक्षता और नौकरशाही का इस्तेमाल जब वो नैतिकता से पूरी तरह रहित हो जाए तो कितने विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
ये आधुनिकता के स्याह पक्ष पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। और अंत में एक सार्वभौमिक सबक जो हम सब अपने जीवन में आज के समय में उतार सकते हैं।
सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि मेरे ख्याल से ये है कि मानवीय सभ्यता और नैतिकता एक बहुत ही नाजुक संरचना है, बहुत फ्रजाइल। इसे बचाने के लिए निरंतर सतर्कता की जरूरत है। किसी भी समूह को अमानवीय बनाने के प्रयासों के प्रति सजग रहना और सच बोलने का साहस रखना, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो, हमारी साझा मानवता की रक्षा के लिए अनिवार्य है, डिब्रेत्सेनी की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि उदासीनता या चुप्पी भी कभी कभी अपराध में साझेदारी बन सकती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।